क्योंकि ये सारी जो चर्चा यहाँ हो रही है ये कीर्तन का ही फल है। हरि कीर्तन की पृष्ठभूमि पर ये सब चर्चा हो रही है। यदि हम कीर्तन करने वाले भक्त नहीं होते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अगर हम इसको कहने वाले किंचित सा कीर्तनीय सदा हरि करने वाले अगर हम भक्त नहीं होते तो ये चर्चा श्रद्धा टू प्रेम हम लोग करते भी नहीं, और करते भी तो शायद समझ में नहीं आती ये चर्चा। तो ये हरि नाम ही कल भी परम द्वेदी महाराज कह रहे कैटलिस्ट, वैसे वैसे कैटलिस्ट नहीं कह सकते इस हरि नाम को, कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट वो जो पोटेशियम पर मैंगनेट होता है, KLMNO4, या तो फिर जब वाटर प्रयोगशाला में जल भी बना सकते हैं, बनाते हैं, बना के दिखाते हैं, 2 parts ऑफ हाइड्रोजन H2 और O ऑक्सीजन 1 part, तो इन दो एलिमेंट्स तत्वों का संयोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से H2O या दूसरे शब्दों में जल उत्पन्न होता है। तो इस उत्पत्ति में, इस संयोग में सहायता होती है पोटेशियम परमैंगनेट नाम के दूसरे एक क्या धातु कहेंगे या ये द्रव्य। तो वो द्रव्य इस संयोग में प्रत्यक्ष संबंध उसका नहीं होता है, लेकिन वो उसकी उपस्थिति में, अपनी उपस्थिति से वो प्रभाव डालता है इस प्रक्रिया को, उसकी गति को बढ़ाता है या संभव कराता है ये संयोग अपनी उपस्थिति से। तो जो तो वो करने वाला, प्रभाव डालने वाला जो जो वस्तु है, पदार्थ है, उसको कैटलिस्ट, केमिस्ट्री रसायन की भाषा में उसको कैटलिस्ट कहा है। ऐसे कई कैटलिस्ट है, कई प्रकार के अलग अलग प्रयोग में, अलग अलग संयोगों में अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। तो हमारा और भगवान का संयोग, योगा योग मिलन भी होना है। तो मैं कह रहा था जो सही नहीं था वैसे, कि ये हरि नाम कोई कैटलिस्ट बनता है, क्योंकि वैसे इस हरि नाम से ही तो हमें मिलन करना है, हरि नाम से हमारा मिलना जुलना होना है। वैसे मैं ये कह रही हूँ वैसे कि ये जो यहाँ चर्चा हो रही है ये भी भगवत तत्व है। तत्वतः एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो मुझे कैसे जानता है, तत्वतः जानता है। तो अब शायद पहली बार जो पिछले 3 दिनों से जो अलग अलग सत्रों को श्रद्धा से प्रेम तक के सत्रों को सुन रहे हैं, अभी शायद वो जो तत्वतः नाम का शब्द आपने कंठस्थ किया होगा पहले कभी। इसका क्या हुआ, समाधि लग गया? हाँ, भाव आपको भाव ही दिखाई देता, जहाँ भी देखे महाराज भाव का चश्मा लगाए है, जहाँ भी मुझे तो आपने भाव देखा उसमें। अच्छा, तो हुआ तत्वतः, अब जो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं भक्ति का शास्त्र, भक्ति का तत्व, ये तत्वतः हम लोग समझ रहे हैं राधा बनेनाथ की, और ये तत्व ये भी भगवान है, ये भगवान से भिन्न नहीं है। तो तद्वत ये हरि नाम भी भगवान से भिन्न नहीं है, हरि नाम ही भगवान है। और जो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत कथा, भगवत प्राप्ति, कृष्ण श्रद्धा से प्रेम, ये भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। ज्ञान, ये शास्त्र, गीता भागवत पर ही तो ये आधारित है। शास्त्र आचार्यों ने उसको थोड़ा सीढ़ी बना दिया, आधार तो बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही आधार है। तो ग्रंथों के आधार से ही इन द परस्यूएंस ऑफ द वैदिक वर्जन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टू परस्यू इट, तो मूल वेद पुराण गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों के मदद से हमारे पूर्वाचार्य गौड़ीय वैष्णवों ने ये सोपान बना दिया, सीढ़ी बना दी। जैसे राधारमण महाराज भी कह रहे थे, जो बिखरा हुआ ज्ञान है उसको हुआ, मैंने लिखा था, या जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठे किए हैं, उसको हुआ आसान बनाए हैं हमारा मार्ग, भक्ति मार्ग। तो हुआ ये मार्ग के संबंधित ज्ञान भी, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये भी भगवान का ही स्वरूप है, और हरि नाम भी भगवान का स्वरूप है। तो हरि नाम भगवत स्वरूप है, उनकी कृपा से हमें क्या होता है, ये सिद्धांत, ये तत्व समझने में मदद होती है, सरलता से हम समझ सकते हैं। और जब इन सिद्धांतों को, इस तत्व को जब हम समझते हैं, तो हरि नाम के अधिक निकट पहुंचते हैं, हरि नाम में रुचि बढ़ती है, हरि नाम ही हरि है, प्रभु है, इसका हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये दोनों भी भगवत स्वरूप है, जैसे भगवान का, भगवान की विग्रह एक स्वरूप है, रूप, उसको तो बड़ा आसान नहीं है समझना कि ये रूप, इसको रूप ही हम लोग कहते हैं, फॉर्म ही कहते हैं, तो ये तो रूप स्वरूप ठीक है, लेकिन हरि नाम का कहा रूप है, इसमें कहा रूप है, तो उसको भी रूप या स्वरूप समझना थोड़ा कठिन लगता है। फिर शास्त्रों को जो ज्ञान लीला जो समझाई है, तो आप इस पर कई पहले चर्चा थोड़ी थोड़ी आप सुने होंगे, या कल्पना कर सकते हो, या चिंतन करो, या और भविष्य में और भी सुनोगे, जिससे आप समझ सकते हो ये कैसे अलग अलग भगवत स्वरूप है। तो हुआ, तो वैसे कैटलिस्ट कहना कोई अपराध नहीं होगा। तो हरि नाम की मदद से हम लोग इस सिद्धांतों को हम सीखते हैं। हरि नाम अगर हम लोग नहीं करते तो ये बातें हम लोग समझ नहीं पाते। ये इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अच्छे सत्र चल रहे हैं, हाँ चल रहा है ठीक से, नहीं कुछ लोग अभी नाराज और दुखी लग रहे हैं, पता नहीं कुछ उनको विरह महसूस हो रहा है, कल क्या होगा, कल कैसे जी पाएंगे। वाह, कई सारे भक्त क्या पधारे हैं, तो कई सारे है भी नहीं। तो मैं सोच रहा था अच्छा होता कि और भी कई सारे भक्त यहाँ इन सत्रों में होते, इससे लाभान्वित होते, क्योंकि बड़ा गंभीर चर्चा है। कभी कभी हम लोग ऐसे गहराई में जाते हैं। अगर मोती चाहिए तो मोती कहाँ मिलते हैं? दरिया के, समुद्र के, क्या कहोगे, गर्भ में, समुद्र के गर्भ में। ओके, ऊपर क्या होता है? ऊपर तो फेन होता है समुद्र के, तरंगे होती है, सबको इधर ठुकरा देगी उधर फेंक देगी, इतने में कुछ मृत शरीर भी आ गया और कुछ आ गया। जो ऊपर ऊपर जो रहते हैं उनको ये सारा फेस करना पड़ता है, लेकिन जो गहराई में जा सकते हैं उनके हाथ क्या लगेगा? मोती लगेंगे, रत्नाकर कहाँ है? समुद्र का एक नाम क्या है? रत्नाकर। भक्ति रसामृत सिंधु की भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये अमृत, भक्ति का अमृत, ये बिंदु वही या मोती, ये रत्न, रत्नों का खजाना जहाँ होता है उसको रत्नाकर या समुद्र कहते हैं। तो वो रत्न तो उन्हीं को प्राप्त होंगे जो गहराई में जाएंगे, समुद्र में नीचे उतरेंगे, जो ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं उन्हें अधिक कुछ वो रत्न प्राप्त नहीं होंगे। तो यह वो प्रयास हो रहा है वो रत्न प्राप्ति का, भक्ति के रसामृत प्राप्ति का। तो ऐसे प्रयास में, प्रयत्न, उद्यम, जिसको कुछ बार हम लोग सुने हैं सत्संग में, प्रयास करके आप जो आए हो, ट्रेन से कहाँ, सीजन वर्षा का है और कई नदियाँ नाले क्या क्या पार करके, भूखे प्यासे भी आना पड़ता है कभी कभी। ऐसा ही हुआ ना आज, तो मतलब आपने प्रयास किया। प्रवास मतलब उसमें कई कठिनाइयां होती, तो आप आए हो तो वह तो और भी भक्त आते तो अच्छा होता है, अधिक भक्त लाभान्वित होते। ये जो हुआ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की ये नींव हम लोग डाल रहे हैं, पहले कुछ पहली बार नहीं, पहले भी डाल चुके हैं, अभी थोड़ा उसको और हम लोग मजबूत बना रहे हैं। स्ट्रांग फाउंडेशन होगा तभी तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट की, आंदोलन की जो इमारत है वो ऊंचे जा सकते हैं, गगनचुंबी बन सकते हैं। इमारत कितनी ऊंची इमारत, जो गगन को चुंबन कर रही है, ऐसी इमारत खड़ी करनी है तो उसका फाउंडेशन कितना मजबूत होना चाहिए। तो जो 10,000 ईयर्स या 9.5 9,500 वर्षों तक ये एक के ऊपर एक मंजिल ऐसी चढ़ती जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसी जाएगी, वर्टिकल जाएगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी, तो उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रांग चाहिए। ये फाउंडेशन है। और इसी के साथ हम लोग वैसे धर्म संस्थापनार्थाय, जिसको कहा धर्म संस्थापनार्थाय, हम लोग धर्म की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया। संकीर्तनैक पितरौ, दो पिता है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। संकीर्तनैक पितरौ, तो बुक में जो ज्ञान है, बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ आधार है। इतने गहराई में जाके हम लोग सब समय पढ़ नहीं पाते, या पढ़ते भी है तो समझ नहीं पाते, इसीलिए इस प्रकार के सेमिनार सत्संग का आयोजन हुआ है। या जो समझे हैं वो कहाँ कहाँ से, यहाँ का श्लोक, यहाँ का सूत्र, यहाँ का विधि, यहाँ का विधान, यहाँ का निषेध, बिखरा जो हुआ है उसको इकट्ठा करके ऑन द प्लेट उनको थाली में सब देते हैं, परोसते हैं। ये आपकी ब्रेकफास्ट हो गई, ये आपका लंच हुआ, ये आपका मतलब सेमिनार प्रस्तुत करता कुछ तैयारी करके आते हैं ना, कुछ आपके लिए भोजन, आपके भजन के लिए भोजन, फूड फॉर योर भजन तैयार करके आता है, सोच के आते हैं, चिंतन करके आते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, कोई साक्षात्कार भगवान को प्रार्थना करके आता है कि मैं समझाना चाहता हूँ आपके प्राप्ति की विधि, शास्त्रों से कहीं कहीं से मोती हीरे सब इकट्ठे करते हैं विषय के अनुसार, और फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता है। तो वह जब हमने कुछ एक दो महीने पहले विषय निश्चित किया कि हम लोग श्रद्धा से प्रेम इस विषय पर सेमिनार रखेंगे, उस वक्त मैंने वैसे शायद उस वक्त गंभीरता से नहीं सोचा था कि कितना गंभीर है ये विषय, कितनी गहराई है, कितनी विस्तृतता है, और एक आध्यात्मिक क्लिष्टता भी कह सकते हैं, गहना कर्मनोगति, तो ये भी गहन है विषय। तो हमने सोचा कि आठ भक्त आठ प्रवचन दे देंगे, ये इस विषय पर देगा, वो इस विषय पर देगा। तो जैसे भागवत की कथा होती है तो कभी कभी उसी प्रातःकाल कोई बताया जाता आपको भागवतम पकड़ा देते हाथ में, ये श्लोक है तो उस समय से 45 मिनट में क्लास है, तो उस समय 45 मिनट में जो भी विचार आते हैं तैयारी होती, उसी से भागवत की कक्षा तो हो जाती है। लेकिन ये विषय वैसा नहीं है श्रद्धा से प्रेम वाला। इसका साक्षात्कार भी मुझे अभी अधिक हुआ जब से मैं सुन रहा हूँ, या मुझे तैयारी करनी पड़ी। मैं तो ये आचार्यों की वजह से ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे आचार्यों ने, आचार्य देवो भव, जीव गोस्वामी पाद की जाय, जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी, हम लोग रूपानुगज है, उन्होंने वे जो लगभग सोते नहीं थे, लगभग खाते नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी तो छाछ ही पीते, वो भी ये घड़ा भर के नहीं, कोई छोटा सा कुल्लड़ भर के, वो भी आधा रह गया उसको पीजिए, वो पीते नहीं थे वो। तो भी उनका समय किस में जाता था, इसी आज जो ये सब सारा खजाना, ये सारी संपत्ति के हम जो अभी मालिक बने हैं, ये सब उन्होंने इकट्ठे करके हमारे लिए इकट्ठे की। फिर एक आचार्य ने उसको भली भांति समझाया, नामाश्रय करी जतने, जतन मतलब संभाला, जतने तुमी, हाँ ताखो अपन काचे, तो हरि नाम आश्रय का जतन, या ये सब रत्नाकर, ये भक्ति रसामृत का सिंधु, ये सारे बिंदु इकट्ठे रखे, इसकी रक्षा की, रक्षक होते हैं ना। जैसे एक समय जीव गोस्वामी रक्षक थे हमारे गौड़ीय संप्रदाय के, तो समय समय पर अलग अलग आचार्य, आचार्य रक्षा के विश्वनाथ चक्रवर्ती एक समय थे, तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाए। तो ये आचार्य उन्होंने रक्षा की है इस खजाने की, इस संपत्ति की। तो हमारे देश की अगर कोई संपत्ति है तो इस संपत्ति को हम लोग अभी यहाँ बांट रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। तो लूट सके तो लूट, अगर आप लूट सकते हो इस खजाने को, आपको आमंत्रित किया जाता है। वैसे चोर को कोई आमंत्रण नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो इस खजाने के लिए, प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है कि आप इसको लूट लो, इस खिड़की में से बाहर जाओ, ऐसे भी जाओ या बैठे रहो, कोई पकड़ेगा नहीं आपको। लूट लो, इस जितना लूट सकते हो लूट लो, जेब भर लो, अपने नोटबुक्स भर लो लिख लिख के, आपका मन भर लो जी भर के। इसी के साथ क्या होगा, प्रभु दिल में बैठ जाएंगे, विश्राम करेंगे, प्रकट होंगे, प्रेम प्राप्ति। मतलब ये आप क्या होंगे, धन्य होंगे आप, धन्य धन्य हो आप, ऐसा कहा जा सकता। आप कैसे हो, आप सभी धन्य हो, धन्य हो मतलब आप धनी हो। तो किस प्रकार का धन, ये सब ज्ञान का धन, ये सारे। तो इसी के आधार पर कृष्ण भावना की नींव या आगे के नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भई मोर नाम, ये तब होगा जब हम इन बातों को सीखेंगे, श्रद्धा से प्रेम तक की बातें सीखेंगे। नहीं तो हम लोग भुक्ति ग्रस्त, मुक्ति ग्रस्त तो है, पूर ग्रस्त ही नहीं है, केवल मराठी में पूर, महापूर, बाढ़ आती है तो महाराष्ट्र में बाढ़ आई तो उसे त्रसित थे लोग। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये भुक्ति का रोग, मुक्ति का रोग, सिद्धि का रोग, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी बहुत हो गया। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ धर्म ये तो सारी पिशाची है, महाराज बता रहे थे श्लोक। ये तो इसे ये रोग है, इसी को भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज। तो यहां हम लोग पुनः वही भुक्ति, वही मुक्ति, वही सिद्धि के लिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना नहीं की। तो ये प्रेम प्रेम की जो बातें चल रही है, जो चर्चा का विषय है भाव प्रेम, यही तो, इसी को देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, जो दुर्लभ है। अभीष्ट सिद्धि जीवन की क्या है, कृष्ण प्रेम। जो क्लेम करता है, दावा करता है कि मैं वैष्णव हूं, तो उसको क्या करना चाहिए, इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, ताकि क्या हो, शीघ्रातिशीघ्र, ये भी नहीं कि देखा जाएगा, शीघ्रातिशीघ्र अभीष्ट सिद्धि मनुष्य जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त करें। वो क्या है, कई मंदिरों में जब कहते हैं तो सभी भक्त साथ में कहते हैं, क्या है लक्ष्य, कृष्ण प्रेम। हर बात को तीन बार कहना होता है, मतलब बड़े महत्व, हरेर नाम हरेर नाम है, तीन हो। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो इसको भूलना नहीं। तो इससे हम लोग भिन्न है। कृष्ण प्रेम ये कमोडिटी, ये स्पेशलिटी है गौड़ीय संप्रदाय की। और लोग कुछ थोड़ा कहते होंगे, लव thy लॉर्ड विथ ऑल thy हार्ट विथ ऑल thy स्ट्रेंथ, जैसे बाइबल में लव तो कहा है, लेकिन बस फिनिश, लव कह दिया, लेकिन आगे पीछे और कुछ नहीं कह सकते उस लव या उस प्रेम के संबंध में। निश्चित ही वह लव मतलब भगवत प्रेम का ही संकेत है, वहां कोई साधारण भौतिक कामना के संबंध में नहीं कहा है, भगवत प्रेम की बात है। लेकिन बाइबल नहीं समझा पाएगा, कुरान नहीं समझा पाएगा वो प्रेम क्या है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं गॉड इज ग्रेट, सभी शास्त्र कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, अल्लाह मतलब ही इस शब्द का नाम अर्थ ही ग्रेटनेस या महानता है। लेकिन कैसे है भगवान महान, ये समझना है तो फिर गीता भागवत ही समझा सकता है भगवान की ग्रेटनेस महात्म्य। तो प्रेम, प्रेम की चर्चा और भी कुछ लोग करते होंगे, शब्द कहते होंगे प्रेम प्रेम, लेकिन प्रेम वस्तु अगर सीखना है, समझना है, पाना है, तो वह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में, दरबार में राधा परिनाथ की, ये संभव होगा। तो ये अंतिम सत्र है। कठिनाई ये होती अंतिम वक्ता होने के कारण, कई बार तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सभी वक्ताओं ने इस सीढ़ी को प्रेम तक पहुंचा ही दिया है, कुछ संकेत होता ही है, कुछ संबंध है, इंटरलिंक है। राधा रमन महाराज भी इस भाव और प्रेम के संबंध में चर्चा किए, हम उनके आभारी हैं, हमारा काम आसान हो गया। लेकिन कठिनाई भी है कि कुछ बचा ही नहीं है। कह रहे हैं बात सही है, उन्होंने अगर 10 मिनटों में कुछ कहा भाव और प्रेम के संबंध में, उसको 10 घंटे भी अगर है तो पर्याप्त नहीं होंगे, इतना कुछ कहा जा सकता है। फिर उसकी तो हम कुछ कहेंगे, हम भी और सोपान के बारे में हम भी कहेंगे, आप लोगों ने हमारे सोपान के बारे में कहा तो हम भी कुछ कम नहीं है। और ये सोपान भाव और प्रेम का एक दृष्टि से कठिन भी है, और तो मैं कह रहा था कि ये जो भाव और प्रेम है ये दुर्लभ है, कठिन है प्राप्त करने में, और इसकी चर्चा भी कठिन ही होनी चाहिए। महाराज तो खड़े होके प्रोफेसर की तरह ही आज का लेक्चर दिए, मुझे भी लग रहा था कि मैं भी लेक्चर एक दिन बन जाऊंगा। यस यस, मैं भी वैसे करने वाला हूं। तो कई बार आप सुन चुके हो वैसे, इससे तो आप परिचित होंगे. भक्ति, क्वालिटीज ऑफ भक्ति एट डिफरेंट स्टेजेस, तो तीन स्टेजेस बताइए, तीन स्तर है. एक को साधना भक्ति कहा है, महाराज जो चार्ट बनाए उसमें स्पष्ट है, आसक्ति तक, श्रद्धा से आसक्ति तक साधना भक्ति है. फिर भाव भक्ति अपने में एक एक स्टेज है, और प्रेम भक्ति अंतिम और तीसरी स्टेज बताई है. ये जो छह लक्षण है, इसमें से जो साधना भक्ति करते हैं वे दो ही लक्षणों को प्रकट करते हैं या प्राप्त होते हैं. क्लेशाग्नि, फिर क्लेश किस प्रकार के कितने हैं उसका वर्णन भी है. पांच प्रकार के क्लेश. और शुभध, क्लेश से हम लोग मुक्त होंगे साधन भक्ति से, और कई सौभाग्य, मंगल, शुभ, शुभ का लाभ को प्राप्त करेंगे, ऑल ऑस्पिशियसनेस साधना भक्ति के अंतर्गत. तो बचे हुए जो चार लक्षण हैं, दो भाव भक्ति में और दो प्रेम भक्ति में है, तो भाव भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभा. हाँ, ओके, हाँ ओके. तो जैसे एक बार इसके संबंध में हम लोग कह चुके हैं कि प्रेम भक्ति की शुरुआत साधन भक्ति से होती है, और या उसका आधार प्रेम भाव है, उसका आधार साधन है. तो साधना के दो, भाव भक्ति के चार लक्षण, प्रेम भक्ति के छह लक्षण हैं. तो ये भाव भक्ति केवल दुर्लभ ही नहीं है, कैसी है, सुदुर्लभ है. तो संसार में जितने भी धार्मिक लोग हैं, अधिकतर जो धार्मिक लोग हैं वे पहले दो ही लक्षणों को प्रकट करते हैं. ये दुर्लभता जो भाव की है वहां तक उनकी पहुंच नहीं है. तो भाव को जो प्राप्त हुआ, मतलब भक्ति की जो सुदुर्लभता है, और उस सुदुर्लभ भक्ति से जो प्राप्तव्य गंतव्य व्यक्ति या स्थान है, भगवान है या प्रेम है, वो उन्हीं को प्राप्त होगा जो वह यहाँ तक पहुँचे हैं, भाव तक पहुँचे हैं. ये दुर्लभ भाव की स्थिति है. फिर मोक्ष लघु कृत है ये भाव भक्ति, इसकी भी चर्चा कई वक्ता कर चुके हैं. मुझे भी स्मरण हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब तुच्छ समझा है, जन्म लेना है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं. ये मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, या धर्म प्रोज्जित कैत वोत्र, उसको भागवत में कोई स्थान नहीं है मोक्ष का, मोक्ष को. और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नहीं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए. और भी कई प्रार्थना भागवतम में ही आती है. तो भक्ति की ही मांग की है, और डिराइड्स इवन कंसेप्शन ऑफ लिबरेशन, इसको तुच्छ समझा, नगण्य समझा है, इसको धिक्कारा है भक्ति शास्त्रों ने और भक्तों ने मोक्ष को. जो धिक्कारने के स्थिति में है, मनस्थिति में है, आध्यात्मिक स्तर पर है, वो भाव भक्ति में ही संभव है. कईयों ने तो अपना जीवन का लक्ष्य या धर्म का लक्ष्य मोक्ष बनाया है, लक्ष्य ही मोक्ष बनाया, लेकिन जो भाव भक्ति में है ये तो इस मोक्ष को ठुकराते हैं अपने जीवन से मन से। जैसे हम लोग श्रवण कर रहे हैं इसी को थोड़ा रिपीटेशन हो रहा है हम लोग के। और फिर जब हम प्रेम भक्ति और भी मन की चेतना की अंतकरण की वो सर्वोच्च स्थिति है, श्री कृष्णाकर्षिणी जिसको ये प्रेम भक्ति प्राप्त हुई है, उसी से भगवान आकर्षित होंगे। ये भक्ति आकर्षित करती है भगवान को। यह कर्षति स कृष्ण कहा है, कृष्ण वो व्यक्ति है जो औरों को आकर्षित करे अपनी ओर, लेकिन भक्ति ऐसी अपनी भगवान की वैसे शक्ति है जिसके मन में अंतकरण में उदित हो जाए वहां भगवान पहुंच जाते हैं। और शायद भविष्य में थोड़ी देर में लंच के पहले बाद में हम चर्चा करेंगे उसके संबंध में कि वो ये संक्षिप्त में ये है कि ये जो भाव है और उसी का घनीभूत अवस्था या फलीभूत फल है प्रेम, इसके अलग अलग रस बताए हैं। भाव में ही रस जो पांच रस है ना, पांच रस वैसे 12 रस है द्वादश, तो 7 गौण कहे हैं, 5 प्रधान कहे, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो ये रस, रसों को भाव भी कहा, माधुर्य भाव भी कहा है, सख्य भाव भी कहा है। तो रस कहिए, ये 5 रस कहिए या 5 भाव कहिए, तो आचार्यगण समझाए हैं इन दोनों आत्मा भी जीव भी रसास्वन आस्वादन करता है और भगवान भी रसास्वादन करते हैं। धर्मराज दोनों पार्टी भी लाभान्वित होती है। तो जिस भक्त के पास रस है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा, जिस भक्त के पास रस है उसके आस्वादन के लिए भगवान भी वहां पहुंच जाते हैं, या कभी कभी उस भक्त के पीछे पीछे भगवान, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार शक्ति आछे, हम जैसे वैष्णव के पीछे भागते हैं, आपके पास कृष्ण है आप भी हमें कृष्ण दे सकते हो, आमी तो कंगाल धाई तव पाछे पाछे। तो उस प्रकार भगवान भी भक्त के पीछे पीछे आ जाते हैं उस वो रसास्वादन करने के लिए। चलो यह उत्सव हो रहा है, सदसंग हो रहा है, सारे साधु एकत्रित होके क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, यत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठन, यह बहुत बड़ी फीस्ट होगी, रसास्वादन होगा। तो रसास्वादन दो पार्टी मिलके करती है। हम लोग तो समझते हैं कि हम लोग भक्त आपस में रसास्वादन करते हैं, लेकिन तीसरी पार्टी कहो या दूसरी पार्टी कहो वो भगवान है। भगवान होने से वैसे रसास्वादन होता है, रस का आस्वादन होता, आदान प्रदान होता है। तो ये भाव के अंतर्गत कहा है, अलग अलग प्रकार के भाव या अलग अलग प्रकार के रस, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये रस है, ये भाव है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा है, हे रसिको, श्रोताओं को कहा है, मुहुरहो रसिको भुवि भाव कहा श्रीमद् भागवत पिबत भागवतम, पिबत भागवतम रसमालयम। ये जो रसमालयम, ये रस का जो खजाना है, बहुत बड़ा प्याला है, इसको क्या करो, पियो। पिबत भागवतम किसको कहा है पीने के लिए, भक्तों पियो, हे रसिको पियो। तो भक्त को रसिक कहा है और भक्त को पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो भक्त भी रसिक है, रस का आस्वादन करते हैं, तो भगवान कुछ रसास्वादन में पीछे नहीं है, उन्हें तो रसिकों के रसिक शेखर कहा है। श्रोता या भक्त अगर कोई रसिक है तो भगवान कैसे है, रसिक शिरोमणि है, रसिकों में श्रेष्ठ है। तो यही तो योग है, यही तो संबंध दोनों आत्मा का और भगवान का, और दोनों में आदान प्रदान है, रस, रस का आस्वादन, भाव का आस्वादन। और इस भाव में भगवान है, आत्मा है, और भाव है, भक्ति है, मतलब भक्ति, प्रेम भक्ति संबंध स्थापित करती है। तो ये तीन तत्व से शाश्वत है, एक है भक्त, दूसरे है भगवान, और उन दोनों को जोड़ने वाली, साथ रखने वाली, जैसे दो ईंटों के बीच में जैसे दीवार होती है तो क्या होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट। कभी कोई मिट्टी भी होती है तो ज्यादा समय नहीं टिकेगी, पीछे के जो सोपान है वो भी कुछ संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो भी दो ईंटों को कुछ समय, जैसे IMPM की ओर जाते वक्त भी एक दीवार खड़ी है, तो उसमें भी वैसे ईंट के ऊपर ही ईंट रखा है, उसमें मिट्टी भी नहीं है और सीमेंट भी नहीं है, इसका परिणाम क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। हम हर वक्त आते जाते इस ईंट उठा के फिर रख देते बगल में, लेकिन वो सीमेंट है और वो भी क्या, टाटा का, बिरला का, बिरला का सीमेंट है, तो फिर उसमें भी गोल्ड है, क्या अलग अलग क्वालिटीज बताते हैं, तो फिर पक्का काम हो गया, चिपक गया। तो इस सोपान से ऊपर चढ़ते, वैसे जीव का संबंध तो हुआ, वैसे प्रवेश करता है आदो श्रद्धा से, वैसे संबंध शुरू हो गया उसका, लेकिन वो पूर्ण हो गया, पुनर्स्थापित हुआ तब सदा के लिए, जब वो भाव से भी आगे बढ़ के प्रेम तक पहुंचेगा, तो वहां जीव भी है, भगवान भी है, और उनका संबंध है भक्ति के माध्यम से। और मुक्ति के लिए कोई स्थान है यहां, वेयर इज मुक्ति, मुक्ति कहां है यहां, अंतिम अवस्था में मुक्ति कहां है, मुक्ति तो क्या गई काम से, आपको अच्छा लगा था वो, गई काम से, गया काम से, गया बाय। वैसे भक्ति की एक नौकरानी कौन है जानते हो, मुक्ति है। भक्ति के दरबार में नौकरी चाकरी करती है ये मुक्ति। वो भागवत के महात्म में कहा है, श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराण में, भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, और एक विशेष उनकी सेविका है, वो है मुक्ति, और भी गंगा जमुना सरस्वती और भी कई उनकी सेविकाएं सेवा करती रहती है। तो मुक्ति तो कुछ भी नहीं है, ये लघुकृत और तो कृष्णाकर्षणी प्रेम में कृष्ण कृष्ण को भी आकर्षित करती है ये भक्ति। कृष्ण भी पीछे पीछे जाते हैं भक्त के, या कुछ आस्वादन कुछ या खीर मिलेगी सूंघते हुए, कहाँ पर स्वीट राइस कहाँ है, और या तो खिचड़ी ही है, तो भगवान बगल के आश्रम में जाएंगे, वहाँ क्या चल रहा है। तो इस प्रकार भगवान आते हैं, आकर्षित होते हैं, कृष्णाकर्षण। और सांद्रानंद आनंद जब घनीभूत होता है, सांद्र आनंद दो शब्द है, सांद्र और आनंद। आज ही मैंने देखा उसे शब्दकोश में, सांद्र मतलब अत्यधिक अत्यधिक अवस्था या मात्रा या घनीभूत अवस्था, उस तो आनंद तो शुरुआत में कुछ बूंद बूंद मिल सकती है, लेकिन इस अवस्था में सागर में आप गोते लगाओ, भक्ति रस का सिंधु ही प्राप्त हुआ। कोई साधक है, अभी अभी प्रवेश कर लिया उसने हरे कृष्ण मंदिर में, या आ गया कुंभ मेले, आ गया कहाँ आ गया, तो साधु संघ हुआ, तो कुछ तो अनुभव करने ही लगता है, कुछ आनंद का, कुछ शांति का, कुछ सुख का, कुछ लेकिन जब वो प्रेम अवस्था को प्राप्त करेगा तो उस अवस्था में सांद्रा आनंद, वो आनंद, वो आनंद ना ही अमीरी में, जो आनंद फकीर करे, जो आनंद फकीर को, जैसे वृंदावन के छह गोस्वामियों को अगर हम फकीर, फकीर वैसा अच्छा शब्द नहीं माना जाता, वैसे कई बार फकीर है तो फकीर है, फकीर का लकीर का क्या ऐसा कुछ है? तो जो पूर्ण वैराग्य और वैराग्य की मूर्ति, और तो वो जो आनंद का अनुभव करते हैं, प्रेमानंद का, भजन भजन आनंदे न मत्तालिको, राधा कृष्ण भजन आनंदे न मत्तालिको, वो जो वर्णन है, वंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीव गोपालको। तो जो षड गोस्वामी वृंद जिस आनंद का अनुभव करते थे, किसमें, राधा कृष्ण भजन आनंद कहा है। तो औरों की भी कईयों की पूजा है संसार में, देवों की, देवता की पूजा होती है, और ब्रह्म का भी आनंद है, ब्रह्मानंद। इन ये जो सांद्रानंद स्थिति है भक्ति से जो प्राप्त होती है, ये दुर्लभ है, सुदुर्लभ है ये सांद्रानंद स्थिति। तो मैंने कुछ पॉइंट यहां लिखे हैं, वो किसी निश्चित या उचित क्रम से भी नहीं होंगे, जैसे मुझे स्मरण आया कुछ रेफरेंस से, कुछ जैसे भी भगवान ने बुद्धि दी और जो भी, तो उसके अनुसार यहाँ लिखा हूँ। तो उसमें से कुछ पॉइंट अभी होंगे लंच के पहले, कुछ लंच के बाद। वो भी है ना, कॉर्डलेस माइक भी है ना, तो तैयार रखो। तो जैसे हम लोग यहाँ भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग महाभाव का भी नाम सुने, आप लोग सुने ना, तो आचार्यगण समझाते हैं महाभाव महाभाव पर अधिकार है राधा रानी का, और वो लिखे हैं कि कृष्ण भी, कृष्ण से भी अधिक भाव, महाभाव भाव की कुछ अधिक मात्रा राधा रानी में प्रकट होती है। कृष्ण भी, दोनों की कंपटीशन होगी भाव को प्रकट करने की, तो कृष्ण को हार जाना होगा, राधा जीतेगी महाभाव के कंपटीशन या मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में जो भाव पाया जाता था उस भाव का नाम महाभाव। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए जगन्नाथपुरी, दर्शन किया, जग 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 कहते हुए ही वे गिर पड़े। वहां कौन आ गए? सार्वभौम भट्टाचार्य आए, उनको घर ले गए और सारी परीक्षा की उन्होंने, जांच पड़ताल देखी ये। तो उन्होंने निष्कर्ष, उनका निष्कर्ष ये था कि ये तो भाव, इनमें भाव है कि नहीं वो मैं देखना चाहता था। कई सारे यात्री आते हैं और लौटने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, बंगाल में कुछ इसका अभाव नहीं है, कली का कुछ ऐसा प्रभाव है, बंगाल में आंसू बहाने वाले लोग जितने मिलते हैं शायद और कई नहीं मिलते होंगे। पदयात्रा के समय हमने देखा 15 सेकंड में, ना 15 भी नहीं, 5 सेकंड के अंदर, यस 5 सेकंड के पहले बीड़ी फूंक रहे थे और महात्मा को देखा, पदयात्रा को देखा था, ऐसे बीड़ी फेंक दिया और महात्माओं के चरणों में गिर जाते हैं और ऐसा पकड़ लेते हैं कि छोड़ते नहीं, और फिर कुछ मिनटों के बाद ऐसा करके प्रार्थना करेंगे, ये गोसाई गोसाई कहेंगे और आंसू से। तो कभी कभी लगता है हम भी, प्रभु हमको ऐसे आंसू कब प्राप्त होंगे। तो ये कुछ थोड़ी, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति ही नहीं हुई है तो वो भाव और वो लक्षण जो भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति में, वो कहाँ आएंगे। तो ये प्रैक्टिस से संभव होता है, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रैक्टिस से हम लोग ये लक्षणों को प्रकट कर सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं। या कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमारे जयप्रताका महाराज कह रहे थे, कुछ लोग अपना कुछ कलाकारी भक्ति क्षेत्र में दिखाने के लिए कभी 24 प्रहर कीर्तन, अष्ट प्रहर कीर्तन होता है तो उसमें खूब रोना पड़ता है, तो नहीं रोएंगे तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिर उसका पैसा भी तो कम मिलेगा ना, किराए पर लाए जाते हैं, तो जो अधिक रोएंगे, जो आंसू अधिक बहाएंगे, अधिक कांपेंगे, तो उनका भाव भी ज़्यादा होता है। तो कह रहे थे जयपदा का महाराज कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, बड़े चालाकी से ऐसा बजाते हुए कुछ करते हुए नाक में थोड़ी सी मिर्च फेंक देते हैं, लाल मिर्च, और फिर भाव ही भाव आ जाता है। तो महाराज ने अंग्रेजी में कहा चिली भाव। कौन से भाव को प्रकट कर रहे हैं? चिली भाव। तो ऐसे भी पाखंड, क्योंकि इसका महत्व तो है, इसका स्थान तो है इन अष्ट विकारों का, लोगों ने पढ़ा है, सुना है, तो उसको प्रदर्शन भी करते हैं। कई उद्देश्य होते हैं, प्रदर्शन कुछ ऐसे थोड़ा सरलता से नहीं होता है तो फिर ऐसे कृत्रिम साधनों का उपयोग करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे। तो हुआ तो ऐसे लक्षणों से वैसे सावधान। तो वहां पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जब परीक्षा हुई, कौन भाव है कि नहीं, तो सारंग भट्टाचार्य ने घोषित किया, ये केवल भाव ही नहीं, ये तो महाभाव। तो उन्हें महाभाव क्यों? क्योंकि राधा रानी का भाव को प्रकट कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो सहजता से जो भाव को प्रकट करते हैं वे कहलाते वैसे सहजिया। सहजिया एक बीमारी है, एक रोग है हमारे धर्म के अंत, कई दोष है, कलेर दोष निधे राजन निधि है, भंडार है उसमें। एक सहजिया मेंटालिटी, सहजिया प्रवृत्ति ये अधिक पाई जाती है। मतलब लोग वैसे पूरे साधक भी नहीं होते हैं, जैसे महाराज ने जो बनाया चित्र, तो श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक ये क्या है, सारी साधना है। साधना के बाद फिर प्रेम भाव और प्रेम, उसमें ये सारे अष्ट विकार, ये लक्षण। तो आदो श्रद्धा ही, कुछ श्रद्धा तो है, थोड़ी सी कुछ भजन साधु संग किंचित सा, और वो भी पता नहीं जाने सही परंपरा में नहीं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। आप अभी धीरे धीरे समझने लगे होंगे कि ये परंपरा में होने का क्या लाभ है। अगर हम परंपरा में नहीं है तो कैसे मंदहा सुमंद मतयो, कैसे मति और गति पथ भ्रष्ट हम हो सकते हैं, हमको किया जा सकता है। तो ऐसे ही संग जो पहले ही कोई सहजिया है, उनके संग में अगर कोई आएगा तो उनके सारे अनुयायी कैसे बनेंगे। अगर नेता ही उनका गुरु आचार्य उस टीम का अगर स्वयं ही सहजिया है, महासहजिया, तो सहाजियों का लीडर बनेगा ना स्वयं ही। तो उनसे वो सीखेंगे ये इस प्रकार का अशुबहाना या ये लक्षण को प्रकट करना, ये तो ऐसे डेली थिंग। और उनको कोई रोकता नहीं है, कोई नहीं कहता कि ये गलत है, नाउ ये ऐसा है वैसा है, आप अनर्थ से भी मुक्त नहीं हुए हो। तो हुआ सहजिया नाम की एक प्रवृत्ति है, जिसको सर्वधर्मान परित्यज्य जिसको कहा है, उसमें वो परित्यज्यता में, उस लिस्ट में, सूची में ये सहजियता जो है, सहजिया भाव को भी रखना चाहिए। ये हमको पहचान, धीरे धीरे भक्त पहचान पाएंगे जब इस प्रकार की शिक्षा होगी। सहजीय मतलब ये लक्षण वाला व्यक्ति को सहजिया कहते हैं। तो जैसे चर्चा हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये स्तर का है, ये वो है, ये वो ये है, हु इज हु, कौन कौन है, हम लोग पहचान पाएंगे। तो ये एक हो गया, और भी काफी कहा जा सकता है, कहना भी है तो सहजिया बड़ा टॉपिक आया, महाभाव राधा का। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। तो भाव का अगर जीवन भर ही भाव है, भाव की स्थिति में है, वैसे शीघ्रातिशीघ्र कहा है, शीघ्रातिशीघ्र उस भाव को प्रेम को प्राप्त करना है, और मृत्यु के समय जिसकी बहुत सी आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार का भाव मृत्यु के समय होगा, यम यम वापी स्मरण स्मरण भावम त्यजंती अंति, स्मरण स्मरण करते हुए, ऐसा अर्थ है, स्मरण मतलब स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है, जिस प्रकार के भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर त्यागता है, उसी के अनुसार उसको आगे का शरीर प्राप्त होगा। जैसे भरत महाराज की चर्चा हम लोग सुन रहे थे इन सत्रों में, तो उन्होंने जो स्मरण किया, हिरण का स्मरण किया, तो मरण के बाद हिरण ही बन गया, तो एक उदाहरण कहा जा सकता है उसका, कि जो जैसा भी हम स्मरण करेंगे उसके अनुसार हमें अगले या तो जन्म नहीं मिलेगा, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति होगा, या मिलेगा तो उस प्रकार भाव कैसा है। हाँ, डैडी डैडी भोला कहो भोला तो डैडी ने क्या कहा, बेटा कोका कोला। कोका कोला का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो कोई कोका कोला लोक में गए होंगे, उनके पुत्रों ने क्या किया, फिर हरिद्वार गए और उन्होंने सोचा कि हमारे पिता की अंतिम इच्छा क्या थी, कोका कोला, तो चलो उनके आत्मा के शांति के लिए कोका कोला का वितरण करते हैं। तो ये कोका कोला भाव, तो इन भावों से बचने के लिए, ऐसे कितने सारे भावों ने हमारे मन को अंतकरण को घेर लिया है, आच्छादित कई सारे भाव है, तो उसका नेति, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ऐसे में मतलब ये अनर्थों से जैसे मुक्त होते जाएंगे हम लोग, तो हम लोग सही भाव, हमें कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना, तो फिर हमारा जो भविष्य है, अधिकतर श्रील प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि हम लोग क्या भाव है, क्या भाव है, तो क्या भाव मतलब मिर्ची का क्या भाव है, या प्याज किस भाव से चल रहा है, या केशव जी होंगे तो चांदी का क्या भाव, हर व्यक्ति अलग अलग पूछेगा, इन भावों में हम लोग फंसे हैं। तो वह यम यम वापि स्मरण भावम, तो भाव का भगवान कहे, अब ये जैसे मैंने कहा कि कोई क्रम या मैंने निर्धारित नहीं किया है, इसके लिए मुझे थोड़ा उठना होगा, कहाँ मैं, ये है ना,
और भी एक विश्वाद और फिर शून्यवाद और कई भौतिकवाद और साम्यवाद और गांधीवाद और कई सारे वाद विवाद और इसके संवाद संसार में चल ही रहे थे, आज भी चल रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उन कईयों का दमन करने का प्रयास किया अपने प्रचार से, और कईयों के हृदय प्रांगण में भाव भक्ति कृष्ण भक्ति की स्थापना करने का प्रयास किया, क्योंकि जीव प्रेम की खोज में है, भगवान की खोज में है, और उसको कितना आनंद चाहिए, सांद्रानंद, इतनी उसकी आवश्यकता है, नीड है, एक बूंद से थोड़ी सी ओम शांति शांति से क्या होगा, शांति मतलब उस शुभदा हुआ, शुभदा को प्राप्त किया, लेकिन सांद्रानंद तो वो तो तभी संभव होगा जब जब भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। तो प्रभुपाद ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र देखे और ये महामंत्र ही भगवान इनके संपर्क में लाके कईयों को आनंद दिए, प्रभुपाद अनुभव कराए ब्लिस का, एक्सटसी का कुछ परिचय दिए प्रभुपाद। I think I'll take this letter. I changed my mind. It's from there looking. I just thought that the next sutra I'm going to cut there. हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ, स्टडी हो रही हमारी स्पेशल हायर एजुकेशन, कल भी हम लोग ने चर्चा की, वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, मतलब VIHE, फिर मायापुर इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन तो MIHE, फिर PIHE भी हो सकता है, पंढरपुर इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन। तो यहाँ हम थोड़ा, ये जो एजुकेशन हो रहा है, इट इज हायर एजुकेशन, हायर। तो उसका सारा सिलेबस है, सारा थीसिस लिखे हुए हमारे आचार्यों ने, तो ये सब साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है, इसमें तकनीकी टेक्निकल नॉलेज भी है, इसलिए भी थोड़ी कठिनाई होती है, नहीं तो ऐसे माइक्रोफोन ले लो कुछ कहो, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल विज्ञान है। किसमें बोलना है, इसमें हुआ तो ये जो हायर एजुकेशन है, ये जो टेक्नोलॉजी को हम लोग सीख रहे हैं, ये जो साइंस, जो शास्त्र सीख रहे हैं, ये किसने, तो इसके भी कोई साइंटिस्ट होने चाहिए। तो रूप गोस्वामी साइंटिस्ट थे, या जीव गोस्वामी शास्त्रज्ञ थे, और ऐसे और कई नाम कह सकते हैं। तो इन्होंने, तो साइंटिस्ट की जैसी प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है उनकी लेबोरेटरी कौन सी है, उनकी भजन कुटीर, अपने भजन कुटीर में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या उनका जो हृदय है उसको भी गुहा कहा है शास्त्रों में, हृदय को गुहा कहा है, गुहा मतलब केव, गुफा, गुहेश्वर, गुहा के ईश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण जो इस गुफा में रहते हैं, तो उस गुफा में, उस गुहा में भी, हृदय में भी इन साइंटिस्ट भक्तों ने, शास्त्रज्ञों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि इत्यादि गौड़ीय आचार्यों ने, इन शास्त्रज्ञों ने प्रयोग किए हैं अपनी कुटीर में, अपने हृदय प्रांगण में, उस गुफा में। और ये कौन से रसायन का प्रयोग किया, भक्ति रसायन का उपयोग किया है, रसायन कौन सा है, भक्ति रसायन का उपयोग किया है, और भक्ति रसायन मतलब फिर संयोग भी होता है, इसमें ये मिला देंगे, जैसे हमने कहा 2 parts of hydrogen, 1 part of oxygen, तो क्या होता है फिर, वाटर होता है, इस प्रकार कई सारे कॉम्बिनेशंस है, कई सारे संयोग है, मिश्रण है, तो अलग अलग उसके परिणाम भी है। तो वह
हरि ओम।
तो ये जो श्रद्धा के प्रेम जो विषय है तब जिस पर हमारे आचार्यों ने प्रयोग किया हुआ है, और इसमें से कोई भी मनोधर्म नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये शास्त्र है। शास्त्र मतलब साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक। टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर हैदराबाद में करो ये प्रयोग, या न्यूयॉर्क में करो, या टोक्यो में करो, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? H2O ही होना चाहिए। दिस इज साइंटिफिक एग्जैक्ट एज इट इज। और क्या कहा सर, कहा जा सकता साइंटिफिक, साइंटिफिक शास्त्रीय। तो ये भी शास्त्र है, साइंस समझा है, स्पिरिचुअल साइंस है। या भक्ति रसामृत सिंधु ही क्या है, प्रभुपाद ने उसको सब टाइटल दिया, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, साइंस ऑफ भक्ति योगा, भक्ति का एक शास्त्र। भक्ति का शास्त्र कौन सा है? भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये जो भजन क्रिया है, कुछ करना है, धर्मराज प्रभु ने भजन क्रिया मतलब कुछ करना है, करना है क्रिया से कुछ करना है। तो ये भजन की क्रिया, वैसे भजन क्रिया प्लस साधु संग का क्या परिणाम होगा? तो भजन क्रिया एक व्यक्ति श्रद्धा के साथ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भजन क्रिया निष्ठा के साथ कर रहा है। आप समझे प्रश्न? दोनों भजन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धा के साथ कर रहा है, एक निष्ठा के साथ कर रहा है, तो अंतर है। तो उसके क्या लक्षण होंगे, ये विषय है वैसे। और एक भजन क्रिया तो वैसे श्रद्धा से लेकर भजन क्रिया चलती ही रहेगी यहां तक, और यहां से भी परे और गोलोक में भी जो क्रियाएं होती है भगवान के साथ, जो प्रेम का जो संबंध, कार्यकलाप, कावर्ड बॉयज एंड गोपीज और गाय भी है, वो भी उनके क्रियाकलाप उनका भजन ही है। ग्वाल बालों का वो भजन है, गोपियों का वो भजन है, रूप गोस्वामी के भजन क्या आ? वो भी है। तो हुआ, तो भजन क्रिया अनर्थ अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों के साथ भी की हुई एक भजन क्रिया, और अनर्थ से मुक्त होके की हुई भजन क्रिया, रुचि के साथ की हुई भजन क्रिया, आसक्ति के साथ की हुई भजन क्रिया, भाव के साथ, प्रेम के साथ, मतलब हर एक का अलग अलग लक्षण, अलग अलग उसका अंतरंग का रंग बदल जाएगा। यहां अगर कुछ काला है, इसने देखो पैंट भी काला पहन लिया, और इसका गोल क्या है, हरा भरा बनना है, तो हरा भरा यहां पहुंच गया, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो इसका दिल क्या होता जाएगा, सफेद होगा और सैफरान हो जाएगा, या सैफरान होगा, देखो सैफरान हो गया। प्रेम का रंग कौन सा है? रेड। भौतिक दृष्टि से कि हम अध्यात्म में उसने इसको रंग कहा है गोल्डन,
तब तक कांच हरि हो तब तक कांचन तब हुआ, मतलब भगवान का दर्शन कर करके वो भी गोल्डन है, राजानी गोल्डन है, तो वो देख देख के वही रंग तो हुआ। तो ये बड़ा ही साइंटिफिक है और इसका इस पर इसका फॉलो कहिए, इसका अवलंबन कहिए, कोई भी कर सकता है। जैसे H2O का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कोई भी कर सकता है, रिजल्ट वही आएगा। तो उसी प्रकार ये जो इसका जो एक्सपेरिमेंट करेगा, इसमें कोई देश का या लिंग का या उम्र का या सजातीय मतलब ब्राह्मणी चाहिए, ऐसा कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट जो है, जो प्रयोग है, कोई भी कर सकता है, एक ही रिजल्ट। उसी प्रकार ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये भी कोई भी कर सकता, कोई भी जीव कर सकता है, ये नहीं कि केवल मनुष्य ही। चैतन्य महाप्रभु ने तो पशुओं को नचाया भाव और प्रेम में, मतलब हर जीव। साध्य का गुण हुआ, कई बार हम लोग सुन ही रहे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण हुआ। ये प्रेम नाम की जो वस्तु है, रंग वस्तु कह सकते हैं, तो ये कहीं जाके बाजार में खरीदने की वस्तु बाहर नहीं, ये हमारे अंदर है। महाराज कहते अभी सोदा बैठे हो आपके पास प्रेम है, अभी आपके पास प्रेम है, और ऐसा समय नहीं था कि जब आपके पास प्रेम नहीं था और न रहेगा सदा के लिए, तो उसको अनुभव कैसे करना है कि मुझ में प्रेम है। तो इसीलिए तो ये सारा सोपान है, इसकी मदद से। और उसमें भी फिर साधु संघ है और भजन क्रिया है, भजन क्रिया में श्रवण कीर्तन ये भजन क्रिया है। इस भजन क्रिया से श्रवण आदि कहा है, श्रवण आदि मतलब केवल श्रवण नहीं, बिगिनिंग में श्रवण है, यस। तो जो नवविधा भक्ति, इसकी शुरुआत कहां से है? श्रवण से। श्रवण आदि कहने से क्या समझना चाहिए? श्रवण आदि जब कह दिया तो पूरा का पूरा कहना चाहिए। शुरुआत है श्रवण से, लेकिन आगे बढ़ना है कहां तक, उसका जो पूरा जो लिस्ट है आत्मनिवेदन। तो इससे क्या होगा, तो अलग अलग विधि श्रवण कीर्तन आदि उसको उदित करेगी, क्या उद्दीपन उद्दीपक होगी, उद्दीपक उद्दीप्त करेगी, उद्दीप्त जगाएगी, अंदर है उसको बाहर खींचेगी, बाहर उठाएगी उसको, दोबारा गिर रहे उसको दोबारा कुछ सपोर्ट देगी नीचे से, ताकि वो जगे प्रेम। तो ये प्रेम तो सभी जीव का प्रेम पर अधिकार है, जितने सारे जीव हैं। तो जो इसको इस विधि को फॉलो करेंगे वे सभी प्रेम के पुजारी बन सकते हैं। घड़ी की ओर देखना कि तो जहां तक ये भाव और प्रेम, महाराज भी कह रहे थे, महाराज कह रहे थे भाव, भाव सूर्य है, सन तो उसकी प्रेम सूर्य है तो उसकी जो किरणें हैं वो क्या है भाव है। तो उसी को दूसरे या और भी उदाहरण हमारे साइंटिस्ट शास्त्रज्ञ आचार्य कहे हैं भाव फूल है, ये बीज है ना, यहां बीज था, बीज नहीं दिखाया, यहां बीज था, बीज से ही तो ये सब लता है। तो पहले कुछ कोमल पत्ते आ जाते हैं, ये सब पत्ते हैं रुचि रस, फिर फूल, फूल से फल, प्रेम का फल थोड़ा हरा भी लग रहा था, बाद में हमने कहा थोड़ा रंग बदली करो, पक्का होना चाहिए ना, गलितम फलम चाहिए, इज नॉट अ रॉ, कच्चा फल नहीं मिलेगा प्रेम का, अच्छा कुछ फल हरे ये होते हैं। तो जब चरणों का स्पर्श होगा, भगवान के चरणों को ये लता का बढ़ते 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 वैसे वैसे ऊपर भी जाने, ये कोई फॉल डाउन नहीं है, वो सब हम तो सुने हैं, ये नीचे जाना मतलब कोई पतन की बात है नहीं, ये बढ़ना ही है। ये फूल का स्पर्श जब होगा भगवान के चरणों के साथ, फूल को समर्पित किया, फूल पत्रम पुष्पम स्वयं ही अपने वो बीज से अंकुरित लता और वो सभी जब समर्पित होगी, ऐसे इस चित्र से वैसे समर्पण भाव भी है, झुकना है। वृंदावन की जो कई वृक्ष और लता क्या करती है, झुकती ऊपर की ओर नहीं जाती, थोड़ी जाती ऊपर फिर झुक जाती है, मानो ब्रज की रज स्पर्श करना चाह रही है, अपने मस्तक पर उठाना चाह रही है, ऐसे कई वेली कई ब्रज मंडल में हम लोग देखते हैं। तो ये वेली भी कैसी है, झुक के भगवान के चरणों को स्पर्श कर रही है, एक ही साथ पत्ते भी रहेंगे, फूल भी रहेगा और फल भी रहेगा। यहां तो देख रहे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ये कौन है अनंत शेष मतलब इन्होंने अगर साड़ी वगैरह पहनी होती तो अच्छा होता, लेकिन फिर इतना तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं। आप क्या लगा सलाम कर रहे हैं
मैं तो सोच रहा था वो कह रहे कि बस समय हो
गया। तो ये इस प्रकार के कई अनर्थ है, जिसे निवृत्ति निष्ठा, मतलब जैसे ध्रुव महाराज निष्ठ, देखता हूं मैं कौन मुझे हिलाता है, एक जगह खड़े हो गए। और कई बार जब डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं ध्रुव महाराज के, तो आंधी हो रही है, तूफान चल रहा है, क्या क्या दिखाते हैं, तो ध्रुव महाराज तो वहां से हिलते नहीं, निष्ठ स्थित ध्रुव वहां से पीछे मुड़ नहीं, यू टर्न नहीं, वहां से यहां से यू टर्न। फिर रुचि, हमने सोचा कि इससे आपको समझ में आएगा रुचि। ऐसी रुचि अगर किसमें, चरणामृत में, हरि नामामृत में, जितनी रुचि हम आइसक्रीम में, जितनी रुचि है हमें को अनुभव है सभी को आइसक्रीम में, व्यक्ति कॉम्पिटिशन में खा लेते हैं
अकेले, अच्छा एकांत सेवन भी करते
हैं, ऐसे ही बहादुर गबरू मिलते हैं। तो स्वाभाविक आकर्षण रुचि परम दृष्टवा निवर्तते हुआ यहाँ पर, ये क्या हुआ यहाँ, परम दृष्टवा निवर्तते, संसार के भी रस है, संसार के भी रस है, उसमें षड रस बताए ना, छह अलग अलग रस उनके, तीखा तिक्त ये खट्टा ये वो से मिला के। तो ये तो वो उन रसों से ये मुक्त है, परम दृष्टवा निवर्तते। फिर आसक्ति ये कौन है, देख क्या है, भौरा है, भ्रमर है, तो भ्रमर और यह मधु के लिए आ गया। तो जब मधु का पान करता है तो भ्रमर को हटा सकते हैं आप, इतना आसक्त होता है वो, इतना आसक्त होता है उस मधु से, अगर उसके पीछे के पैर पकड़ के आप उसको पीछे खींचने का प्रयास किया तो क्या होगा, उसके पैर आपके हाथ में, उसका मुख कहां, मधु में, इतनी आसक्ति, इतना मस्त रसास्वादन लोलुपश्च, लोलुपता रस में, लोलुपता ग्रीट पर पुरुष के साथ कभी संबंध हो जाता है कि क्या पति उपपति कह सकते हैं, उपपति जारपति, तो इसमें कितनी आसक्ति उस स्त्री की होती है, तो उस प्रकार की आसक्ति किसमें, भगवान में या भगवान के इस भक्ति कार्यों में, भाव और प्रेम। तो इसको कई ढंग से परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके समझाया जा सकता है, लेकिन हाँ ये सारा साइंटिफिक है, शास्त्र है, टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो आप सब ये टेक्निक सीखो, ये साइंस सीखो, साइंटिस्ट बन के औरों को भी साइंटिस्ट बना दो। अब लिख के लिख रहे हैं ना सब, तो जो नहीं आए हैं आप जब जाओगे अपने अपने मंदिर आश्रम तो क्या करोगे, जो लिखा है वो नोट्स आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, और मुझे जाके इसी बातों को औरों को सुनाना है, मैं किसी को सुनाऊंगा, ये सोच के अगर आप सुनोगे तो क्या होगा, हाँ समझ में आएगा भी, अधिक ध्यान और क्या होगा, स्मरण भी रहेगा, हाँ प्रश्न पैदा होंगे, तो ऐसा कोई प्रश्न मुझे पूछता है तो क्या, तो फिर हम लोग और विचार करेंगे और अध्ययन करेंगे, पूछताछ होगी। तो ऐसा सोचो, मैंने शुरुआत में कहा कि अच्छा होता अधिक और कई सारे भक्त होते तो जो नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी सर्विस है, ड्यूटी है और कुछ है, तो उनको आप इस पर सेशन दे सकते हो, इतना हम पहली बार ये कर रहे हैं, ये टॉपिक श्रद्धा टू प्रेम. टीचर्स भी नए हैं, स्टूडेंट्स तो नए हैं ही, तो हम भी और सीख के इस विषय पर कुछ छोटी सी पुस्तिका लिखी जा सकती है, मैं सोच रहा था ये अलग अलग इलस्ट्रेशन के साथ. श्रद्धा से प्रेम तक नामक कोई 50-100 पेज वाली कोई छोटी सी पुस्तिका बनेगी, तो वह कुछ इलस्ट्रेशन के साथ, तो वह भक्त तो समझ पाएंगे, बड़ी मदद होगी. जैसे महाराज लिखे थे कुछ दिन पहले कि इस विषय पर कोई किताब लिखी जानी चाहिए, सब लिखा महाराज ने, मैंने तो पढ़ा तो नहीं ना, आपने तो मुझे कुछ नहीं कहा. और किसी ने ऐसा सोचा था ऐसा कुछ होना चाहिए? अयोध्यापति ने भी सोचा था, धर्मराज को भी कुछ मटेरियल. तो इन दोनों विषयों पर मेरे और भी कुछ नोट्स है, पॉइंट्स है, तो उसको आगे हम लंच प्रसाद के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा उस चर्चा को. साथ ही साथ आपके और प्रश्न है या आपके कोई साक्षात्कार है, अनुमोदन की रियलाइजेशन वगैरह ये सब भी कोऑर्डिनेट करने वाले सुंदरलाल प्रभु है, तो आप में से कोई भक्त आपके कोई साक्षात्कार का हो या इसके संबंध, हरी बोल, इसका अनुमोदन मतलब अनुमोदन क्या होता है? हर्ष, हर्ष व्यक्त करना, जो भी हो रहा है यहाँ ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए और भी होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? अनुमोदन. अनुमोदन ऐसा अनुमोदन, ऐसा कुछ अभिनंदन, शुरुआत में होता है,
हो गया कार्यक्रम, तो उसके बाद में जो हर्ष व्यक्त किया जाता है उसका अनुमोदन,
इन द बिगिनिंग,
शुरू में वेलकम, ओके, बाद में वेलकम अनुमोदन,
ओके. तो
कार्यक्रम हो गया तो खुशी बता
देना. हाँ, तो कल अभिनंदन होगा, कल,
कल की
क्योंकि दूसरा एक सत्र, दूसरे प्रकार का सेमिनार शुरू कर रहे हैं हम, तो उस वक्त अभिनंदन होगा उन 7 डेज का जो. ओके, हरी बोल.